असुर मंत्रीगण वै निस्संदेह रजः प्रकृतयः रजोगुणी प्रकृति के कारण तमसा तमोगुण से परिपूर्ण मूढ़ चेतसः मूर्ख व्यक्ति सताम साधु पुरुषों को विद्वेषम साताना उत्पीड़न करना आचेरु संपन्न किया आरात आगत मृत्युव मृत्यु पहले से ही उनके निकट थी। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। रजो तथा तमगुण से पूरी तो अपने हित या अहित को न जानते हुए उन असुरों ने जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी साधु पुरुष को सताना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य जैसे कि भगवत गीता में कहा है, देहो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्व नमुज्यति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी जीव बालपन से युवावस्था या फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। रजो तथा तमगुण से पूर्ण गैर जिम्मेदार व्यक्ति मूर्खता से ऐसे काम करते रहते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए। नूनं पुमत्त कुरुते विकर्म, किंतु ऐसे गैर जिम्मेदार कर्म का फल भी जानना चाहिए, जैसे कि अगले श्लोक में कहा गया है। अगले श्लोक का तात्पर्य नहीं है। आउ श्रेयं यशो धर्म लोकनाशिषये वच हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंस महद अतिक्रम। हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुष को सताता है तो उनको दीर्घायु सौंदर्य यश धर्म आशीर्वाद का उच्च लोक जाने की सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत राजा कंस का अत्याचार शीर्षक चौथे अध्याय का भक्ति वदन तात्पर्य पूर्ण हुआ। सवई राजा प्रकृष्टय तमसा मुह चेतसः। जो व्यक्ति रोजो और तमगुण से युक्त होता है उसको मूढ़ चेतना कहा गया है। और उस वक्त को क्या करता है, सतां विद्वेष आचरत, वो उनसे द्वेष करता है। किससे? सात व्यक्ति से। यहाँ सतां शब्द का अर्थ क्या है, साधु वा जो आस्तिक है। ब्राह्मण लोग भी सतां शब्द में आता है। तो इस प्रकार ये करने से उनको क्या हो जाता है, आयु सीय जश धर्म और परलोक सब नाश हो जाता है। जैसे कभी कभी पदमर्यादा के कारण लोग अहंकार का वशीभूत होकर क्या करते हैं, दूसरों को उपहास करते हैं और वो सोच नहीं पाता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम में राजा रघुगण का चरित्र आता है। राजा रघुगण अपना पदमर्यादे से उस समय सार्वभौम सम्राट था। उन्होंने सोवरी देश का अधिपति था और बद्रिकाश्रम जाके नरनारायण का ऋषि का दर्शन करने जा रहे थे। तो कैसे जा रहे थे, अपना शिविका में चल के नहीं, एक सेवा अपराध में एक अपराध है, वाहन में बैठ करके भगवान का दर्शन करने जाना एक सेवा अपराध होता है। तो राजा रघुगण जा रहे थे, बोला हम लोग वृंदावन जाकर चल के जाएंगे क्या, चल के जाते बहुत दिन लग जाएगा, क्या करना चाहिए, कुछ दूर जाने से पहले वाहन को ताक कर देना चाहिए और अपना चप्पल को दंडवत करना चाहिए, तुम यहां रहो मैं वृंदावन आया, जो भी हो। तो राजा रघुगण का जब एक पालकी ढोने के सेवक का सेवक बनना, उनका सेवक ठीक है, वह दास का आवश्यक पड़ा, तो जड़ा भरत जो महाराज भरत थे अपना प्रारब्ध कर्म का वशीभूत होकर तीसरा जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, अपना पूर्व स्थिति बजाय रहा। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम जो मंदिर में आया, जरूर हम अगला जन्म ऐसा कोई कर्म किए होंगे जिसका वजह से इतना बचपन में मंदिर आ गया है ना। अभी तो पढ़ाई करने का टाइम है, खेलने का कूदने का टाइम है, इधर उधर घूमने का टाइम है, लेकिन हम लोग क्या बचपन में मंदिर है, कोई सुकृति था, ये हमें सोचना चाहिए। जिस प्रकार जड़भरत ने सोचा कि हमारा कोई स्मृति इस जन्म का था उनको याद, हमें याद नहीं है, तो हमें इस प्रकार कर्म करना चाहिए जिस कर्म के द्वारा हमारा जो भक्ति नष्ट हो चुका वो नष्ट दोबारा ना हो। ये अगर हम सोचेंगे तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। कि भरत महाराज के उदाहरण हमारे लिए एक प्रमाण है, तो हमें भी सोचना चाहिए जो कोई स्मृति था शायद, कुछ कोई प्रसाद प्रसाद मिल गया होगा, जो भी हो, जिसका वजह से मंदिर में बचपन से आ गया। अभी हमको क्या करना चाहिए, जड़ भरत का उदाहरण सामने रख के हमें निर्विकार भाव से भजन में अग्रति करना चाहिए, ना कि दूसरा बार कोई उत्पलंग वस्तु में फंस जाना चाहिए। जड़ भरत अगर चाहते थे तो ना कर सकता था, जाम शिविर क्या नहीं ढोएंगे जाओ, इन्होंने जैसे बोला उन्हें अपना लग गया अपना काम में। भक्त का दृष्टि जैसे वो वेद का स्टोरी आता है ना, नारद जी का शिष्य वेद, पहले पशु मारता था, बाद में चींटियों को मारना उसके लिए दुभर हो गया। नारद जी और पर्वत मुनि आ रहे हैं तो दूर से वो देखा तो नीचे देख रहे, कोई हमारा पाव का नीचे चींटी तो ना आ जाए, जो पशु को मार के आनंद मिलता था वो अब चींटी का मारने के लिए दुखी हो जाता है। तो वैष्णव पर दुख हो दुखी तो हम आपको कैसे दुख दे सकते हैं। वैष्णव कभी भी किसी को वाक्यों के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा दुख नहीं देता है, खुद दुख को सहन कर लेता है। ये वैष्णव गुना बोले हैं। जिस प्रकार जोड़ा भरत ने क्या किया, उन्होंने अपने दुख को सहन कर लिया। यदि वो शिविका ढोने का योग्य व्यक्ति नहीं था, वो बोल सकते थे मैं राजा था ऐसा हुआ ऐसे, लेकिन उन्हें चुपचाप रहा। जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, इसे कहते ना तत्ते अनुकंपा सुसिप्त मान भुंजात एवात्म कृत विपाकम, हम भक्त बन गया बोलकर हम लाट साहब नहीं हो गया। हमारा प्रारब्ध कर्म तो हमें भोग करना ही पड़ेगा और प्रारब्ध भोग करने के लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए, तो क्या होगा, हमारा कर्म का नाश हो जाएगा। अगर उससे हम बचने का कोशिश करते हैं तो हमारा कर्म नाश नहीं होगा। भोग के द्वारा अपना सुकृत्व को नाश, नट सुकृत बात क्या बोलते उसको, सौभाग्य जिसको कहते हैं। सुकृत शब्द का अर्थ होता है कृष्ण सेवामूलक जो कर्म उसको सुकृति कहते हैं, वो पाप पुण्य से परे है। तो भोग के द्वारा अपना जो पारोगार अपार जो कुछ भी है उसको नष्ट कर देना चाहिए। जैसे उन्होंने सोचा जो भी हमारा पारब्ध है तो लोग कोई बात नहीं शिविका थोड़ा ढोलू, अब वो कैसे क्या आप लोग को सब तो मालूम है, दुलने लगा उनका गुस्सा आने लगा, वो अपना गुस्सा प्रकट कर दिया। रजो गुणो ताड़ितो, रजो गुण के द्वारा ताड़ित होने के नाते उन्होंने अपना गुस्सा को प्रकट किया और भरत जड़ा भरत को डांटना शुरू कर दिया। जड़ा भरत ने क्या उत्तर दिया, अगर आता को गूंत लिया जाए तो उसका वो तो आप कितना भी गूंथने जाओ कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये राजन आप तो ही कर रहे हो, ये जैसे बोला वो जड़ भी राजा रघुगण रोजो प्रकृत था फिर भी तो बुद्धिमान था, नहीं भगवान का दर्शन करने क्यों जाएगा, बद्री का आश्रम नरनारायण ऋषि को दर्शन कर कुछ तो बुद्धि था। तो जैसे शब्द बोला बोला ये तो कुछ भाषण में कोई व्यक्ति होगा, नहीं तो ऐसा शब्द क्यों बोला, एक बाहक जो शिविका ढोते हैं ऐसा शब्द यूज कर सकते क्या, नहीं कर सकते हैं। बोले कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, नहीं तो ऐसा क्यों करेगा। उन्होंने तुरंत वहां से उतार करके प्रणाम किया, जय श्री श्री गुरु गौरांग अवतार जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी। यहाँ वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भाग श्रीमद भागवत का अनुवाद चैतन्य भागवत है, ख्याल रखो श्रीमद भागवतम का अनुवाद चैतन्य भागवत है, इसमें कृष्ण लीला उसमें गौर लीला, गौर कृष्ण अभेद जेनेरे, अगर किसी को भजन करना है तो गौर ब्रजधामे भेदोना देखिब होइब ब्रज वासी, गौर धाम और ब्रज धाम इसको भेद नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार गौर और कृष्ण में भेद नहीं देखना चाहिए। गौर मंत्र में कृष्ण उपासना, कृष्ण मंत्र में गौर उपासना चलता है, दोनों के लिए मंत्र भी अलग नहीं है। अगर आप कृष्ण को उपासना कर रहे तो गौर मंत्र में कृष्ण पूजा किया जा सकता है, उसी प्रकार गौर सुंदर का उपासना कर रहे तो कृष्ण मंत्र के द्वारा गौर सुंदर को उपासना किया जा सकता है। फिर भी आचार्य लोग गौरव का आलम मंत्र दिया, कृष्ण के लिए आलम मंत्र विधान किया है। तो आचार्य आज्ञा शिरोधार्य, तो गौरव कृष्ण अभेद जान करके अपना एक भजन करना चाहिए। कहीं राजा रघुगण नीचे उतार करके अपना प्रणाम किया, तो आप कौन हो, हमारा कुछ गलती हो गया जिसकी वजह से हमें आपको सेवा कार्यों में लगाया। चैतन्य भागवत कहते हैं सुलोपानी समझ दी वैष्णव निंदा करे, सुलोपानी शब्द का अर्थ क्या है, शिव जी, सूल शब्द त्रिशूल, त्रिशूल किसका पर हाथ में रहता है, शिव जी का। तो शिव जी जैसे वैष्णवाना यथासंभव बोलते हैं, ब्रह्मांड में जितना सारे वैष्णव है शिव जी उन सब में श्रेष्ठ है, वैष्णवाना यथासंभव, निम्न गान यथा गंगा, और पुराना नाम विमंग था, पुराण में ये है श्रीमदभागवत। तो ये सुलोपाने सम व्यक्ति भी अगर वैष्णव निंदा करता है तो उसका भी सत्यानाश हो जाता है। लेकिन आहु श्रेय जसो धर्म सब चला जाता है। तो रोग और नीचे उतार करके उनसे क्षमा मांगा और उनसे तत्व उपदेश लिया, जो भवाटवी का वर्णन बाद में वर्णन किया गया है। ये रजोगुण का द्वारा ताड़ित होने इसका उदाहरण है। दूसरा हम लोग चैतन्य चरित्र चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर का चरित्र में जानते हैं, राजा कोई तो जो उस समय नवाब था मुसलमान शासक, जब मंत्री बा उजीर का परामर्श के द्वारा हरिदास ठाकुर को बुलाया गया तो हरिदास ठाकुर को पूछा, जब इतना अच्छा कुल में जन्म लिए हो जिसे आजकल टेररिस्ट पाकिस्तान में करते हैं, वो सीधा बोलते हैं आप अगर जाओगे ना आपको पैसा दे देगा आपको खाना पीना घर मकान सब कुछ दे देगा, जो जानेगा इंडिया से ब्राह्मण है जो भी है सब कुछ भी देगा, आपको मुसलमान बना देगा। फिर आप जो मुसलमान बन जाओ तो आपको पीछा देखेगा नहीं, वहां का टेक्निक है। जब तक नहीं बनोगे तब तक फूल फ्री, एक बार बनने के बाद आपको पीछे छुटना पड़ेगा नहीं, पर ये तो मुसलमान हो गया और क्या चाहिए। बोला इतना अच्छा कुल में आपका जन्म हुआ है, मुसलमान कुल, इतना सौभाग्य के बाद मिलता है, तो आप ये करके हिंदुआनी क्यों कर रहे हो। बोला देखो हे राजन, सबका शरीर में परमात्मा निवास करते हैं और परमात्मा जिसको जो बुद्धि देता है वो इच्छा ही करता है, और वेद और कुरान राम और रहीम में कोई अंतर बताया क्या? आप तो बुद्धिमान हो, नवाब समझ गया ना, नहीं ठीक है, नवाब उनको दोष नहीं दिया, नवाब उसको ये नहीं दिया, लेकिन कहा बोले संगो दोष से लुहा भांसे, अगर संगो दोष हो जाए तो लोखोन भी पानी में तैरता है, क्या मुसीबत, लोखोन को भी तैरेगा क्या? लेकिन कहा बस है संगो दोष से लुहा भांसे, अगर संगो होगा तो लोहा भी पानी में तैरेगा। यही संगो दोषु राजा का भी हो गया, इसलिए कहते हैं संज्ञात ना कुर्यात कामिनेशु जातसु, कामिनेशु जातसु, कामिनी का संग कभी नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, उसके द्वारा जितना बुद्धि भ्रष्ट होता है दूसरा किसी का संग के द्वारा उतना बुद्धि भ्रष्ट नहीं होता है। तो बोलेगा हम लोग को शादी शुदी किया तो हम लोग क्या करें, पोतनी को छोड़ दूं, हम लोग 24 घंटे उनको संग में करना रहना पड़ता है, एक सेकंड के लिए उनको छोड़ के नहीं रह पाता हूं, तो क्या करो, हम लोग छोड़ दो क्या, ये अर्थ इसमें नहीं रहता है। कामिनीषु जातसु मतलब क्या है, आसक्ति सहित संबंध सहित विषय समूह सकल ही माधव, आसक्ति रहित संबंध सहित विषय समूह सकल ही माधव। अरे जब क्या कहते हैं, कामिनीर काम नहे तब धाम ताहार मालिक केवल जाधव, आसक्ति आसक्ति बिना आसक्ति रह करके आसक्ति रहित संबंध सहित पूरा संसार क्या है, विषम पूर्ण सुख आयते, विश्व पूर्ण सुख कब होगा, जब चैतन्य चंद्र को भजन करेंगे, गौर सुंदर का भजन में विश्व पूर्ण सुख आयते, सब कुछ सुख पूर्ण लगेगा, वही आसक्ति रहित अपना कर्म के द्वारा। सबको जो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं, जिनका सौभाग्य हो ब्रह्मचारी रहता है, जिनसे उत्सुक दुर्भाग्य हो थोड़ा गृहस्थ बनते हैं, क्योंकि तो सौभाग्यवान व्यक्ति तो सबको ही नहीं होता है कि संसार का जंजाल से मुक्त होकर के ये चार कुमार हरिभजन का, पापा हम हरिभजन करेंगे, आपका बात में हम शादी नहीं करने वाला हूं, ब्राह्मण का बेटा शादी कर ले, सृष्टि को वृद्धि कर, बाबा हमारे से होने वाला नहीं है, हम नष्टिक सौभाग्यवान व्यक्ति है। भृगु आदि महर्षि उनको प्रणाम करते हैं, वो भी उनका ही ब्रह्म का ही पुत्र है ना, फिर उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि हमसे श्रेष्ठ है, नष्टिक ब्रह्मचारी। तो उन्होंने प्रणाम करते हैं, तो यही सौभाग्य होना जरूरी होता है, सौभाग्य जो भी है। हरिदास ठाकुर को वेद और कुरान जो समझा तो उन्होंने चुपचाप रहा, लेकिन उनका उजीर लोग जो था वो क्या बोला, नहीं नहीं इसको दंड देना चाहिए, दंड दो इसको, दंड दे, अगर दंड नहीं दोगे ना तो कल दूसरा मुसलमान भी वैसा ही करेगा। अरे भाई जिसको जो करना है करने दो ना, वो मुसलमान तो गलत काम नहीं करेगा, राम बोलेगा ना, रोहिम तो रोहिम है, राम बोलता है कि है, लेकिन वो वहां लिखता है ये पापी गण का संग में राजा भी पाप मोती हो गया, उजीर जो उजीर का मत में ये नवाब हुसैन हुसैन सही शाह दोस्तों में जो भी है याद नहीं पुरुष का नाम, तो उन्होंने ऐसा ही बोला ठीक है अगर नहीं करो आपको दंड भोगना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, दंड क्या किया, बोला 22 बाजार में पिटाई, फिर भी अगर प्राण रहता है तो बोलेगा हरिदास सही है। तो रजो और तमोगुण का द्वारा ताड़ित होकर जैसे कंस का असुर लोग रजो और तमोगुण ताड़ित होकर क्या करें, शतांग शतांग विद्वेश, शतांग विद्वेश मातृ, साधुओं का विद्वेश करना शुरू कर दिया। जिस राज्य में साधु का विद्वेश होता है उस राज्य का पतन समझ लेना चाहिए शुरुआत हो चुका है। कैसे हरिदास ठाकुर का एक दो तीन चार कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हरिदास ठाकुर को इतना व्यत्यवहार करने के बावजूद भी हरिदास ठाकुर को कुछ विकार नहीं हुआ। जो मारने वाला व्यक्ति डर गया, बोला एक दो तीन चार बाजार में पिटाई किया जाते तो मर जाते, तो इतना मारने 22 बाजार में पिटाई होने के बावजूद तो मरा नहीं, क्या कारण है? उपरंतु महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो बोला हरिदास अगर आप नहीं मरोगे तो राजा हमको मार देगा, कृपा करके आप मरो। पर दुख को दुखी वैष्णव ने बोलते ना जागल बोला ठीक है, अगर हम जिंदा रहने से आप लोग मर जाओगे तो मैं मर जाता हूं। मर गया, इतना पीटने के बाद भी जो नहीं मरा ये बोल के मर गया वो। अभी सब उनको उठा के राज दरबार में लाया, बोला देखो मर गया है अभी तो ठीक है ना, बोला हाँ अच्छा किया तुम्हारा मर गया, तो बोला इसको अभी मिट्टी के अंदर डाल दो। तो वो बोला नहीं नहीं, इसको अगर मिट्टी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, सदगति हो जाएगा, इसको गंगा में फेंक दो। तो सब मिलकर हरिदास को भी उठाने जा रहे, हरिदास के अंदर क्या है, स्वयं भगवान अधिष्ठित है, भगवान के अंदर क्या है, पूरा ब्रह्मांड है। कितना ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो हरिदास ठाकुर के अंदर कितना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड हरिदास ठाकुर का पेट में बैठ गया। अभी एक दो किलो को उठा सकता है अनंत कोटि ब्रह्मांड, कौन हिला है क्या, कौन, सब कोई हिलाने जा रहे, हिला भी नहीं पा रहा है, ये क्यों हुआ था? तो हरिदास ठाकुर दिखाया था ये अपने आप को सुधारो, अभी भी समय है। तो हरिदास ठाकुर का वैष्णवता, जब हरिदास ठाकुर का पिटाई हो रहा है तो सुदर्शन आ रहा है, भगवान ने वैकुंठ छोड़ दिया और बोला सुदर्शन जाओ जितना पृथ्वी में जितना मुसलमान है सबको काटो, एको को भी नहीं रखने का। हरिदास ठाकुर देख रहा है जी सुदर्शन आ रहा है तो क्या बोलता है, ऐसे जीवेर कृष्ण करह प्रसाद मोर दोहे नहु के सवार अपराध, हे कृष्ण इनका पर कृपा करो, ये तो मूर्ख है जानते नहीं है, ये मुझे द्रोह करता है, इनको जो हो रहा है समझ नहीं पाता है, कृपा पूर्वक ये बचपना है इनका, आप इनको कृपा करके छोड़ दीजिए। सुदर्शन आके घूम के चला गया, नहीं तो उस दिन पूरा धरा शून्य नहीं क्या ना, इसमें रत्न शून्य होइलो मेदिनी, उस प्रकार मुसलमान शून्य ये पूरा पृथ्वी हो जाएगा जीरो। ये हरिदास ठाकुर के प्रभाव से आज इतना बाल बलंत है, फिर भी वो लोग वैष्णव हिंसा गोविप्र हिंसा करते रहते हैं, समझ नहीं पाता है लोग जब ये। तो बाद में हरिदास ठाकुर को गंगा में फेंक दिया, कुछ दूर बाद अभी गंगा क्या बोलता है, आज हमारा सौभाग्य है, क्यों जब गंगा धरातल पर आ नहीं रहे थे तब तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर मर्त्यलोक में आओ तो मर्त्यलोक से पापी है, वो पाप करेगा कि हमको डुबकी लगाएगा, तो अपना पाप को हमारा में छोड़ के चला जाएगा, तो मैंने में जितना पाप होगा उसको हम कहां छोड़ूंगा। बोला साधु लोग जब नहाएगा तो पाप क्षय हो जाएगा। तो हरिदास ठाकुर जब फेंक दिया तो गंगा खुश हो गया, बोला आज हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है जो हरिदास ठाकुर जैसे व्यक्ति मिला, आज हमारा समस्त पाप, तो गंगा ने क्या कहा हरिदास को डुबाया नहीं, नीचे हाथ रख दिया गंगा के, हरिदास ठाकुर गंगा के हाथों पर तर तर के जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद हरिदास ठाकुर उठ गया, उठ कर अपना हरे कृष्ण, हरिदास ठाकुर काम है क्या है, वैरागीर कित्त सदा नाम संकीर्तन साक पत्र फल मूले उदर भर, ये वैराग्य कृत्य, दूसरा कोई भी कृत्य नहीं उसका, दूसरा कुछ काम नहीं है, सदा सर्वदा नाम संकीर्तन ही करना चाहिए। उसके बाद क्या लिखते हैं, जिहार लालस जे इतिधा शिष्ण द्वार परायण कृष्ण नहीं का है। जो भी ते सब देख के हमें जो रजोगुण, रजोगुण का प्राधान्य होगा तो तमोगुण आ ही जाएगा। कि रजोगुण का प्रभाव से क्या होता है, क्रोध आता है, और क्रोध क्या होता है, तमोगुण का परिचायक है, तमोगुण का गाल है। कामो ऐसो क्रोधो ऐसो रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है। काम परिदीप्ति नहीं होता तो क्रोध होता है, जब क्रोध परिदीप्ति नहीं होता तो क्या होता है, सत्यानाश होता है, बुद्धि भ्रंश। इसलिए यहां कहा गया है ये असुर लोग क्या था, रजो और तमोगुण से पूरी था, और वो अपना हित और रोहित नहीं समझते थे। राजा रघुवंश तो समझ गया, कैसे समझा, क्योंकि जड़ भरत ने उपदेश दिया, उनका संघ का प्रभाव से रघुगण का उद्धार हुआ, और हरिदास ठाकुर का संघ जो यद्यपि लाभ किया लेकिन फिर भी देश नहीं गया, लेकिन फिर भी उस राजा ने जो उजीर थी नवाब जो था वो थोड़ा सा अच्छा बोला था, जिसका वजह से हरिदास ठाकुर को देख करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, अपना क्षमा मांग लिया, उसका उद्धार हो गया। बाकी जितना था वो सब मर गया। वैष्णव अगर क्षमा भी कर दे किसी को, लेकिन वैष्णव का चरम धूलि क्षमा करने वाला नहीं है, ये ख्याल रखना। वैष्णव क्षमा कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव का चरण का रेणु जो है ना, वो व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करेगा। वैष्णव निंदा से दूर रहना चाहिए, ये रजोगुण तमोगुण से ताड़ित होकर के लोग साधुओं का हिंसा करने लगा। भगवद गीता में इसका वर्णन दिया है, 14 अध्याय में प्रकृति के तीन गुण, सत्तंग रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धंती महाबहो देह देहन मद्भयम्। भौतिक प्रकृति के तीन गुण से युक्त है वह सत्त रज तमगुण है। हे अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन तीनों गुणों से बंध जाता है। जो प्रकृति के द्वारा तीन गुण जो हम इस जगत में आते हैं तो हमें तीनों गुणों से बांधते हैं, लेकिन कौन किस गुण से बांधता है उसके कहते हैं, तत्र सत्तम निर्मलता प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानभ। हे निष्पाप, सतगुण से अन्य गुण के अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण से स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाता है। जो जिसको सतगुण होता है क्या करते हो, उनका पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, वो अहंकार का वशीभूत होकर के ज्ञान और कर्मों के द्वारा बांध जाता है। किस प्रकार, जैसे वर्तमान युग का वैज्ञानिक लोग, वो लोग ऐसे ऐसे आविष्कार करता है जिस आविष्कार के द्वारा वो लोग बांध जाता है। आइंस्टाइन उनका ब्रेन को 24 हिस्सा में बांट करके 24 जायगा में रखा हुआ है अभी तक ब्रेन, क्योंकि आइंस्टाइन के न्यूटन है जो भी है, आइजैक न्यूटन आइंस्टाइन है उसका, जिन्होंने जो लॉ मेथड जो निकाला, बोले इसका ब्रेन का क्या पावर है, इसको ब्रेन को एनालिसिस करना पड़ेगा। उसे 24 टुकड़ा किया, 24 साइंटिस्ट के पास उसका ब्रेन अभी तक पड़ा हुआ है, लिक्विड को में लिक्विड का बोतल रखा उसमें डाल दिया जो नष्ट नहीं होने वाला है, अभी तक एनालिसिस नहीं कर पाए तो बन जाता है। रोजो रगात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तान निबद्धाम ते कौनते कर्म संगण देहिनाम। हे अर्जुन, रजोगुण के उत्पत्ति असीम आकांक्षा तथा तृष्णा से होती है। इस जगत जड़ा जगत में जिसको बहुत कुछ चाहिए उसको समझ लेना चाहिए रजोगुणी व्यक्ति है। ऐसा नहीं है आज हम दीक्षा भी लिया, भक्त बन गया, हर कृष्ण महामंत्र जप कर लिए कर रहे हूँ, हमारा गुण से छुप करा, इतना जल्दी होने वाला नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं, एक कृष्ण नामे जत पाप करे खय, कोटि जन्मे पापी ताहा करिते ना पारय, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु नहे यदि कृष्ण प्रेमेर उद्गार, तबे जानेबे तुमि अपराध प्रचुर। करोड़ों जन्म तक पापी अपना पाप कर नहीं सकता है, जितना एक बार कृष्ण नाम लेने से नष्ट होता है। हम तो बहुत बार नाम लेते हैं, है ना, कृष्ण नाम यदि लाए बहु बार, तदस्म सारं हृदयं वतीदं जद हरि नाम गृज्जै अस्मसार। अश्म शब्द का अर्थ क्या है, पत्थर। पत्थर का सार क्या है, वज्र। पत्थर का सार है, जो वज्र अगर पत्थर में गिरेगा तो पत्थर को भी विदीर्ण कर देता है। तदस्म सारं हृदयं वदेतं जद हरिनाम गृज्जे, हरिनाम ग्रहण करने के बाद भी जिनका हृदय कोमल नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए वो वज्र से भी कठोर है। पशु पाखी दूरे पाषाण विदरे सुनी जार गुणगाथा। वैष्णव क्या कहते हैं, अमर मन पाषांत गल्ल नारे, लेकिन हमारा मन रूप जो पाषाण है हरि नाम सुन के बाद गौर नित्यानंद का नाम सुन के भी पिघला नहीं है, क्योंकि पाषाण है जो कठिन बोले, पाषाण से भी कठोर है हृदय, इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो इतना बार भी हरि नाम लेने के बाद अगर हमारा हृदय नहीं पिघलता तो समझ लेना चाहिए ये हमारा हृदय में बहुत सारे अपराध है। नहीं तो एक कृष्ण नाम में के द्वारा समस्त अपराध नष्ट होगा, दूसरा कृष्ण नाम में कृष्ण प्रेम होगा, तीसरा कृष्ण नाम में कृष्ण दर्शन हो जाएगा। सोचो ये कृष्ण नाम कितना प्रभाव है। इस प्रकार क्या समझना चाहिए, जो हमारा अपराध है तभी हमको क्या करना चाहिए, काय वाक्य मन के द्वारा अपराध को दंडवत करके फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ये जितना हो गया वही तुम रहो, इसका आगे नहीं। अगर ये विचार करके अगर हरिनाम हम करते हैं तो हरिनाम क्या करेगा, बोला कि अभी सुधारने का कोशिश करता, हमें भी इसको मदद करना चाहिए, तो भी उसको मदद करेगा। लेकिन हम बार बार वही को दोहराएगा, बोले तो ऐसे करने वाला है, जाने दो जानो, इसको हरिनाम करना, तो हम इसको पर कृपा करने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं ये आगे कहते हैं, तमस्त गानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राविष्ट निबन्धन्ति भारत। हे अर्जुन, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमगुण समस्त देहधारी जीव का मोह है। इस गुण के प्रतिफल क्या है, पागलपन। प्रमाद जो किया दिया था पूर्वा जी को, पागलपन, आलस्य और 12 घंटा सोना, जितना नींद मारेगा उतना अच्छा। जो ज्यादा सोता है वो तमोगुणी है। बोले हम जबरदस्ती जागेंगे, नहीं, जबरदस्ती कोई काम नहीं होता है, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, किसी चीज में जबरदस्ती नहीं होता है। जबरदस्ती को कर्म व भक्ति कुछ भी नहीं कर, स्वेच्छाकृत हो अगर जो चीज होता है ये अच्छा है। अगर हम हरिनाम को वृद्धि करेंगे, शुद्ध भाव में नाम लेंगे तो बाकी आलस्य अपना आप जाएगा। कहते ना, सत्यम सुखे संजति रज कर्म निभारत गान आवृत्त तू तम प्रमादे संचरित। सत्य के द्वारा सुख प्राप्ति होता है, रजो के द्वारा काम करने की इच्छा होता है कर्म, और तमो के द्वारा ये दोनों का आवृत्ति रहता है। और कभी कभी रजो तमो सप्तगुण के द्वारा बोलीभूत होता है, कभी तमो रजो और सप्त का दावा देता है, और कभी सप्त भी रजो और तमो को दावा देता है। इसलिए ये सब चीज को ताक करके सदा सर्वदा सत्व में रहना चाहिए। तो अगर सत्व में रहेगा तो क्या होगा, श्रीमद भागवत उसमें बात देते हैं, उसको बाद में श्रीमद भागवत बताते हैं। तदा रजोस्तमो भावा कामो लोभो दयाश्च जीव चेते अने रणा विद्यम स्थितम सत्य प्रसिद्धति। अगर निरंतर भक्तों का परिचर्या अथवा श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन के द्वारा जब भक्ति योग का प्रतिबंधक अमंगल समूह नष्ट हो जाता है, तब भगवान में निश्चला भक्ति जागृत होता है, और उस समय रजोगुण और तमोगुण से जो काम और लोभ प्रवृत्ति रिपु शांत हो जाता है, और मन इससे मुक्त होकर के सत्य गुण में प्रतिष्ठित होता है। तभी रजो और तमोगुण जो है ये कब होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तब नष्ट होगा जब भगवत भक्ति में स्थित होगा। अगर भगवत भक्ति में स्थित नहीं होता है तो प्रकृति का तीन गुण से छुटकारा प्राप्त तो नहीं किया जा सकता है। गांधी जी भी छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग में नहीं था। फिर भी सत्कर्म के द्वारा सुना जाता है जे मृत्यु समय में हे राम शब्द का उच्चारण उन्होंने किया था, सुना जाता, देखा तो नहीं, सुना जाता है, क्योंकि अंत काले भगवान का नाम शरण करना बहुत सौभाग्य का बात है। ते तदा रजोस्तु भाव काम लोभा एवं प्रसन्न मनुष्य भगवत भक्ति जोगत भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते। तो क्या होगा, प्रेममयी भक्ति के प्रभाव से उस समय संसार का आसक्ति समाप्त हो जाएगा, हृदय आनंद में भरपूर हो जाएगा, और भगवान का तत्व अपना हृदय में परिस्फुट होगा। यहां से लाकर के यहां जाके समापन, ये जो उच्चारण करने जाए बोलने बहुत कुछ है, उतना तो संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं ये रजो और तमोगुण के द्वारा चालित होकर के उपदेश देने वाला कौन था, कंस, जो रजोगुण का प्रतीक है, और बाकी उनका संग में सब रजो और तमोगुण मिला हुआ है। जो चोर का स्वभाव में अगर बैठा जाए तो सब चोर का कैसे चोरी करना वही बात करेंगे, सब अपना अपना बुद्धि निकालेगा किस भाव से कैसे चोरी करना चाहिए। साधु लोग का समाज में अगर बैठा जाए तो वो लोग क्या क्या करेंगे, भगवान का उत्कर्ष प्रतिपादन करेंगे, जैसे किया था ना, भगवान कौन है, साधु लोग को विचार है किसको भजन करना चाहिए, तो बोला भिगु मुनि को भेजा, भिगु मुनि जाकर के सब जगह विचार करके बोला नारायण ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। ये साधु का स्वभाव होता है, साधु लोग का समाज में एक कथा होता है। आज चोर का स्वभाव में क्या होता है, किस जगह में कैसे करके चोरी करने से कैसे पैसा ज्यादा इनकम होगा, हमारा कर्तव्य क्या है, साधु संग, साधु संग अगर नहीं मिलता तो क्या किसका संग करें, शास्त्र संग। शास्त्र क्या है, साधु का वाणी है, तो साधु किसी जगह विराजते हैं, शास्त्र के रूप में विराजते हैं। आज सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी, नारद जी, हमारे परंपरा सब किधर है, इस शास्त्र में विराजित है। तो अगर जब हमें किसी प्रकार का कोई संग नहीं मिलेगा तब तो हमारे लिए संग क्या है, यही संग, इसको लेके घूमो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। समय आया, दो श्लोक पढ़ा, हरे कृष्ण।